यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 19 पर 11 दिसंबर 2015 को दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारे
समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े इसका लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण महामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना होगा। नारायण परा सर्वे न प्रतिष्ठा विभूषति स्वर्ग भूवर्ग नरकेश्वी तुल्यार्थ दर्शिनः भागवत छठे स्कंद 17 श्लोक 28 नंबर। भक्त को यदि नरक में भी उपदेश कार्य के लिए जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं किंतु वे एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में भी उपदेश करते हुए शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है क्योंकि वह निरंतर श्री भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। हरे कृष्ण।
ध्यान से चला आपने श्लोक है। वैसे तो भगवतम का हर श्लोक मीठा है। जैसे हम गन्ने को बीच में से काटो ऊपर या नीचे वो मिठास महसूस होती है, तो हर श्लोक मीठा है। पर कई श्लोकों का बड़ा गहरा अर्थ है। ये श्लोक का उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं और नारद मुनि आप जानते हो उनके मन में एक ही भाव रहता है। क्या भाव? नारायण की सेवा। सैमो नाद शंभु कमला कपिलो मनु प्रदो जनको विष्णु बली भाई ये सिर्फ भाई 12 महाजन माने जाते हैं। मैं एक है नारद मुनि। तो नारद मुनि का एक ही भाव रहता है सेना। महाराज प्रचीन परिषद के बात करते हैं, उन्होंने पहले शिव जी को प्रसन्न किया था और फिर भी आश्रम में प्रवेश किया, जिसके पश्चात वो फिर अपनी पत्नी को बेटे की जिम्मेदारी में छोड़कर फिर से आए नारद मुनि जी को मिलने। वो बोल रहे थे जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। तो नारद मुनि को जब मिले, नारद मुनि हमेशा ठीक स्थान पर पहुंच जाते हैं ठीक समय। तो चेतन की इच्छा थी कि आध्यात्मिक ज्ञान फिर से प्राप्त हो। या प्रचेतन जब नारद मुनि वहाँ पहुंचे, उन्होंने उन्हें आदर दिया और कहा जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से अंधेरापन दूर हो जाता है, आपके समक्ष हमारे अज्ञानता दूर हो जाती है। और उन्होंने नारद मुनि से विनती की कि उन्हें फिर से आध्यात्मिक ज्ञान दें। जब हम किसी संत को मिलते हैं अक्सर क्या देखते हैं, हमें वर चाहिए, क्या वर? स्वामी जी आशीर्वाद हो। तो आशीर्वाद का क्या अर्थ है? ये आशीर्वाद हो कि हम धनी बन जाएं, बहुत एक सुख मिले। अगर उन्हें कहो कि हम आशीर्वाद देंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ो, तो उसे वो इतने खुश नहीं होते। अगर उन्हें कहो कि हम आशीर्वाद देने कि हम धनी बन जाओ, उसे ज़्यादा प्रसन्न होते। जब हम संत में हमारा भाव बना चाहिए कि हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मांगे। तो प्रचेतन ने एक कहा, उन्होंने कहा कि हमें फिर से दिव्य ज्ञान दीजिए। नारद मुनि ने इस अध्याय में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। लगभग हर श्लोक का निर्णय यह है कि भक्ति हो। नारद मुनि ने कहा कि स्वाभाविक व्यक्ति के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म होता है माता के गर्भ से, और इस जन्म को कहा जाता है शोक जन्म। शोकाकांड है वीर्य सीमन। तो शोकाजन हम पशु भी प्राप्त करते हैं, मनुष्य भी प्राप्त करते हैं। दूसरा जन्म हमें प्राप्त होता है जब हम किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं, इसको कहा जाता है सवित्र जन्म। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम प्रमाणिक गुरु से ब्राह्मण ज्ञान की दीक्षा ग्रहण करते हैं, इसको कहा जाता है यज्ञ का जन्म। विरागी नारद मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से उसका प्रभाव पूरे पेड़ में पहुंच जाता है, आपको भूख लगती है तो आपके सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, नहीं सिर कमजोर, कान कमजोर, हाथ कमजोर, पैर कमजोर, पूरा प्रसाद कहाँ डालते हो, एक ही स्थान में डालते हो, कहाँ पेड़ में। पेड़ में प्रसाद डालने से पूरे शरीर में उसका असर प्रभाव पहुंच जाता है। तो ये जो प्रसिद्ध उदाहरण जो अनेक बार प्रभुपाद जी ने भी उपयोग किया है, ये इस अध्याय में प्राप्त होता है। क्योंकि नारद मुनि ने कहा जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में उसका प्रभाव पहुंच जाता है, या पेड़ में खाना डालने से पूरे शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है, इसी प्रकार शुद्ध भक्ति या कृष्ण भक्ति करने के द्वारा अनेक देवता देवियों के प्रति जो आभार है उसे हम चुका लेते हैं। 33 करोड़ देवता देवियों हैं, हम सबका कर्जा कैसे चुकाओगे। सूर्य के देवता आपको रोशनी दे रहे हैं, आप रोशनी का बिल भरते हो, बिजली इस्तेमाल करते हो थोड़े घंटों के लिए, आपको बिजली का बिल आ जाता है, 6 महीने बाद वो बिल बढ़ जाता है ना। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करते हो उसका बिल आ जाता है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं बिल। और इंद्र देवता बारिश के माध्यम से जल देते हैं, उसका हम टैक्स भरते हैं। तो इन सब जिम्मेदारियों को हम निभा सकते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो नारद ने ये भी साबित किया है कि अगर भक्ति योग लक्ष्य नहीं है तो तपस्या का कुछ लाभ नहीं। उसे शब्द में तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए भगवत सेवा। जैसे भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, तपो देवियम पुत्र का ये न सत्व, हे मेरे पुत्र तुम तपस्या करो और किस लिए, कृष्ण की खुशी करो। तो आज के श्लोक में नारद मुनि की एक बड़ा सरल साधन दे रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने का। जैसे हमने कल रात को कहा था, अगर हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो प्रचार का साधन सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवद्गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा उसे ज्यादा प्रिय लगा हुआ है ना। तो वही भाव एक रूप से इस श्लोक में भी प्रस्तुत हो रहा है। इस श्लोक में नारद मुनि कह रहे जनार्दना को कैसे संतुष्ट किया जाए। जनार्दना करते हैं सब जीवात्माओं के स्वामी, भगवान के लाखों नाम है, वो इन सब नामों में नामों का अर्थ भी है। तो यहां नारद मुनि कह रहे हैं किस प्रकार आप जनार्दन को संतुष्ट कर सकते हो। आप सबकी इच्छा है भगवान को संतुष्ट करें सबकी। यहां आपको एक शॉर्टकट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान को संतुष्ट करना है केवल 3 चीजों की आवश्यकता है, आपको भी केवल 3 ये तो बहुत सरल है। कई बार तो 50-100 आइटम का लिस्ट होता है। यहाँ नाना मुझे केवल 3 चीजों का लिस्ट दिया है। क्या है? पहला है दया, दया की भावना। दूसरा है संतुष्ट, संतुष्ट हो हर स्थिति में। तीसरा है सर्वनिधियों पर, मनोनिधियों पर वश करो। अगर आप इन 3 कार्यों को निभा सकोगे तो दानवी के अनुसार आप बड़ी सरलता से भगवान को संतुष्ट कर सकोगे। तो दया का अर्थ है सबकी बातों पर दया दीजिए। भक्त का ये भाव रहता है कि चींटी को भी आदर देना चाहिए, इसलिए वो चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। हरे कृष्ण।
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सुनने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए gkgoswami.com पर जाएं।